ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम षष्ठ स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 5। किमनु तत् दुस्सजय किमनु तत् दुस्सजय ब्रह्मान् किमनु तत् दुस्सजय ब्रह्मान् शिक्ष लिखा हुआ है से लिखा हुआ ओके। पांच बोले थे मुझे कहने के लिए, पांच पढ़ूंगा उसके बाद में श्लोक जो थे है उसके ऊपर हम किम नु तदृश्य ज ब्राह्मण पुंसा भूतानु किम पिताम भवदीघ्राम होताम पुण्य लोको य कर्मणाम। अनुवाद, देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय कार्य वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर परम दयालु एवं वत्सल होते हैं, ऐसी पवित्र आत्माएं परोपकार के लिए क्यों नहीं दे सकते? वे सब कुछ, यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे सकती है। श्लोक संख्या 6 जो आप लोग जिसके ऊपर हम भागवत कथा बोलेंगे, आप मेरे पीछे दोहराइएगा। न्यूनम स्वार्थ परो लोके न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नैति नाह यदीश्वरः। न्यूनम स्वार्थ परो लोके न वेद पर संकटम यदि वेद न सयते नैति नाह यदीश्वरः। न्यूनम स्वार्थ परो लोके न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नैति नाह यदीश्वरः। न्यूनम स्वार्थ परो लोके न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः। न्यूनम स्वार्थ परो लोके न वेद पर संकटम यदि वेद न यातेत नेति नाह यदीश्वरः। लेडीज, शब्दार्थ इस प्रकार है, न्यूनम निश्चय ही, स्व अर्थ पर इस अथवा अगले जीवन में मात्र इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखने वाला लोक सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति न नहीं वेद जानते हैं पर संकटम अन्यों का कष्ट यदि वेद जानते हैं न नहीं यातेत मांगे न नहीं इति इस प्रकार न आह कहता नहीं, यत क्योंकि इस पर दान देने में समर्थ। अनुवाद आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जो परम स्वार्थी होते हैं वे अन्यों की पीड़ा को सोचे बिना उनसे याचना करते हैं, किंतु यदि याचक दाता के कठिनाई को जान लेने तो वह कोई वस्तु न मांगे। इस प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक या भिखारी की कठिनाई नहीं समझना, अन्यथा जो कुछ भी वह मांगे वह उसे देने से इनकार नहीं करेगा। तात्पर्य अभिचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की। इस श्लोक में दो प्रकार की लोक का वर्णन है, एक वे जो दान देते हैं और दूसरा वे जो मांगते हैं। भिक्षु को चाहिए कि वह संकटग्रस्त मनुष्य से दान न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है उसे चाहिए कि वह भिक्षु को इनकार न करे। शास्त्रों के यही नैतिक उपदेश है। चाणक्य पंडित का कहना है, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशो नियते सति। इस संसार की प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाएगी, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग सत्कार्य के लिए कर लेना चाहिए। यदि कोई ज्ञानी हो तो उसे सत्कार्य के लिए कुछ भी नैछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस समय संपूर्ण विश्व विहीन सभ्यता के जादू में रहने से भयानक परिस्थिति में है। कृष्ण भावना आंदोलन के ऐसे अनेक विद्वान पुरुष की आवश्यकता है जो ईश्वर की चेतना या भक्ति को संपूर्ण जगत में पुरुष जीवन करने के लिए आत्म बलिदान कर सके। अतः हम समस्त विद्वान पुरुष तथा स्त्रियों को इसी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होने एवं मानव समाज में भगवत भावना को पुनर्जीवित करने हेतु आत्म बलिदान करने के लिए आह्वान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशदारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों की चरण कमल में प्रणाम करते हुए प्रभुपाद की वाणी को दोहराऊंगा। आप सभी मुझे कृपा कीजिए ताकि मैं कुछ भागवत कथा कह सकूं। यहां पर देवता और दधीचि मुनि के बीच में बात चल रहा है। देवता लोगों को उनकी राजा इंद्र ने कहा था कि आपको असुर लोगों से जीतना है, आपको भूमंडल में जाना है। वहां पर दधीचि मुनि करके एक तपस्वी है जिनकी अस्थि द्वारा आप ऐसे कुछ अस्त्र बनाओगे जिसकी वजह से आप असुर लोग को जीत सकते हो। तो देवता लोगों ने मर्त्यलोक में आए और दधीचि मुनि से प्रार्थना किए। पहले तो वो इनकार कर रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने राजी हुए कि उनकी अस्थि वो देने वाले हैं। और इसी सिलसिला पर देवता लोगों ने उस मुनि के ऊपर बहुत प्रसन्न हो गए और कहा, ये जो श्लोक देव लोगों ने कहा, देवता लोगों ने कहा, इसलिए देव पुत्र करके लिखा हुआ है और जो ब्राह्मण करके बताया गया वो दधीचि मुनि को यहाँ पर संबोधन किया है। उन्होंने कहा, जो कुछ भी मनुष्य शरीर में उपयोगी वस्तु है वो अच्छे कार्य के लिए होना आवश्यकता है। अगर कोई अच्छा कार्य के लिए नहीं देता है तो उसकी कोई उपयोग नहीं हो पाता। और भौतिक संसार में जितने सारे मनुष्य है, कोई भी अच्छा कार्य के लिए वो अपनी जीवन को समर्पित नहीं करते या अर्पण नहीं करते, इसीलिए संसार की परिस्थिति जो है बहुत भयानक है। इस प्रकार प्रभुपाद महाराज ने परपोट में कहा। थोड़े हम पीछे जाएंगे तो 300-400 साल पहले जब कृष्णदास गोस्वामी महाराज यहाँ पर आविर्भाव थे, उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने लिखा था। वे नहीं, 10 लेखक ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखे। चैतन्य मंगल लिखा गया लोचनदास ठाकुर, चैतन्य चरित महाकाव्य लिखा गया और चैतन्य भागवत लिखा गया वृंदावनदास ठाकुर। इस प्रकार वे लोग जो है संसार के लोगों को मूर्ख कहते हैं। अरे मूर्ख लोक सुन चैतन्य मंगल यार गणनाश सर्व मंगल। ओहे मूर्ख लोक सुन चैतन्य मंगल यार गणनाश सर्व मंगल। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। वृंदावन दास कोइला चैतन्य मंगल, वृंदावन दास कोइला चैतन्य मंगल, ଯାହାରସ ବଣିନାଶ ସର୍ବ ଅମଙ୍ଗଳ ଯାହାରସ ବଣିନାଶ ସର୍ବ ଅମଙ୍ଗଳ ଯାଅ ଭାଗବତ ପଢ଼ ବୈଷ୍ଣବେର ସ୍ଥାନେ ଯାଅ ଭାଗ ବୋଲିଏ ବୈଷ୍ଣବେର ସ୍ଥାନେ ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ କର ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣେ ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ କର ଚୈତନ ନିତାଇଆତେ ଜାଣିଏ ମହିମା ଚୈତନ ନିତାଇଆତେ ଜାଣିଏ ମହିମା ତାତେ ଜାଣି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସୀମା ୟାତେ ଜାଣି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସୀମା କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଇସ୍ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କି ବାରେ ମେ ଉନ୍ହେ ବିସ୍ତୃତ ରୂପ ମେ ଲିଖା ଉନ୍କି ସନ୍ୟାସ ଲୀଲା ଯୋ କି ପେହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଠାକୁର ଭଗବାନ କି ବାଲ୍ୟ ଲୀଲା ଲିଖେ ଥେ उसमें से हम कुछ हिस्सा चर्चा करेंगे जो इसी विषय पर बहुत ही सिमिलर है। जैसे यहाँ कहा गया कि वस्तु को अच्छी स्थान पर इस्तेमाल नहीं करने से उसका दुरुपयोग किया जाता है। आप जानते हो कि भवानंद राय जो थे उनकी पांच बेटे थे। चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय को उन्होंने पांडु कहा है। पिछले जन्म में वो पांडु थे और उनके पांच पुत्र थे पंच पांडव। और इसी जन्म में जब वो भवानंद राय बनकर आए उसी समय उनके पांच पुत्र थे रामानंद राय, गोपीनाथ पटनायक, वाणी निधि, कला निधि और सुधा निधि। रामानंद राय आंध्र प्रदेश और ओडिशा की गवर्नर जनरल थे या कि जो राजा वेस्ट बंगाल में नवद्वीप में रहते थे। और गोपीनाथ पटनायक तहसीलदार ऑफिसर थे जो कि राजा के अंडर में जगन्नाथपुरी में वो कार्य कर रहे थे। और उसकी और दो भाई थे कला निधि और वाणी निधि। वो घोड़ा उनकी घोड़े थे और घोड़े शाला की मेंटेन कर रहे थे। और जो छोटे भाई था शायद सुधा निधि या वाणीनाथ वो घर कार्य में व्यस्त थे। लेकिन पांच भाई से चार भाई भगवान चैतन्य महाप्रभु की पक्के भक्त थे। एक भाई जो था वो इंद्रचुप्त में लगा था जिसके नाम था गोपीनाथ पटनायक। यहाँ पर वो लिखा गया है कि इंद्रतृप्ति करने वाले व्यक्ति जो है उसको उसके जीवन की अच्छी इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो तो तहसीलदार ऑफिसर थे और तो खजाना था उनके हाथों में था। उन्होंने 2 लाख रुपए की जो नगद पैसे उन्होंने सरकार से या राजा से ठग लिया था और वो 2 लाख रुपए जो है उन्होंने गर्लफ्रेंड या लड़की को पीछे उन्होंने इस्तेमाल किया था। ऐसा लिखा है कि उन्होंने लड़की के पीछे भाग रहे थे और सरकार की पैसा लेके लड़की के पीछे खर्चा कर रहे थे चोरी करके सरकार से। और इस प्रकार बहुत दिन चला। जब वो पकड़ में आ गए कि 2 लाख रुपया गवर्नमेंट से उसको देना है तो राजा ने उनको बुलाया और कहा गोपीनाथ पटनायक ये तो 2 लाख रुपया आपने हड़प कर लिया है और ये 2 लाख रुपया मुझे चाहिए। उनको कुछ दिन की मोहलत दिया गया जिसकी वजह से उनकी को पैसे दे सके, लेकिन हुआ ऐसा उनके पास इतनी रकम था नहीं, उन्होंने दे नहीं पाए। उसके बाद दोबारा सभा बुलाया गया राजा प्रताप रुद्र और गोपीनाथ पटनायक, उसकी बीच में उन्होंने कहा कि किस तरह सरकार की पैसा लेना ये ठीक काम नहीं है, आप इसको जल्दी से जल्दी चुका कर दो, नहीं तो उसको आपको दंडित किया जाएगा। समय होने पर उन्हें दे नहीं पाया। तीसरे मीटिंग जब हुआ तब वो जो प्रताप रुद्र राजा थे उनको कहाँ बाहर जाना था और उन्हें उसी दिन सभा रखा गया था, जिसकी वजह से गोपीनाथ पटनायक को दरबार में बुलाया गया और उसके बातचीत करने वाले थे उसी समय में राजा जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरे जो बड़ा लड़का है बड़ा जेना उसको ये केस को आप हस्तांतर कर दो, वो जो करेंगे वो अंतिम निर्णय होगा। इतना कहकर राजा वो वहाँ से चल पड़े और अभी जो बड़े जना और जो राजा की बड़े बेटा उन्हें गोपीनाथ पटनायक को बहुत डांटने लगा और गाली देने लगा, कहा मूर्ख बदमाश कहीं का 2 लाख रुपया ले गया और कहाँ है पैसा, तुरंत मुझे पैसा लौटा दो नहीं तो मैं तुमको आशी से आशी दंड देने वाला हूँ। गोपीनाथ पटनायक कहा अभी तो मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, वैसा कीजिए कि मेरे पास कुछ घोड़े हैं आप उसको ले जाइए और उतनी दाम पर उतनी चुकता हो जाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं। तो राजा के बेटा ने कहा ठीक है आप अगर चाहते हो ऐसा करना है तो आप घोड़े को ले आइए। तो घोड़े को एक जगह पर लिया गया और वहाँ पर ये बड़े जना वो वहाँ आए, उसकी मूल्यांकन होगा। तो हुआ ऐसा वो जो राजा की बेटा था उसकी गले में कुछ ये था, उसके एक हुबी था अभ्यास, वो क्या करता था अपने सर को ऐसा घुमाता था हमेशा, ऐसा घुमाता था हर 2 मिनट में ऐसा घुमाता था वो। तो कभी कभी घोड़े लोग भी ऐसा अपनी मुंडी को घुमाते हैं। तो हुआ ऐसा जो घोड़े की कीमत 10,000 था वो घोड़े की कीमत को 2,000 में ये जो राजा की लड़का था उन्होंने मांगा, बोले कि इतने सारे जो घोड़े लाए हो वो करीब 50,000 की कीमत होगा, लेकिन आपको तो 2 लाख रुपया आपको देना है, बाकी 1.5 लाख रुपया आप कहाँ से दोगे। तो गोपीनाथ पटनायक बहुत गुस्से में आ गए, कहा मूर्ख तेरे से मेरे घोड़ा उल्टा अच्छा है, मेरे जो घोड़ा है कम से कम मुंडी हिलाकर नीचे देखते हैं, तुम तो मुंडी हिलाकर ऊपर देखते हो। तो उसको बहुत गुस्सा आया कि मैं राजा का बेटा हूँ और सब लोगों के सामने मेरे बदनाम हो गया, मेरा अपमान किया इसने। उसने क्या कहा, कहा कि तुम्हारी घोड़ा मुझे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए और तुम्हें दंड इस दिया जाता है कि तुमको फांसी दिया जाएगा, ये मेरे अंतिम निर्णय है। तो उसके बाद में गोपीनाथ पटनायक को उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसको बांध के जेल में रख दिया जाए जब तक फांसी की तैयारी नहीं होता है, और उसने ऑर्डर दिया उनके जो परिवार वाले हैं बाणीनाथ काला निधि असुधा निधि और भावानंद राय उनको भी पकड़ के लिया जाए जेल में। तो कुछ लोगों ने गोपीनाथ पटनायक को जेल में बंद कर दिए और कुछ लोगों ने उनके घर पर गए उनके पिता और परिवार वाले को लाने के लिए। उसी समय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहा करते थे और जगन्नाथपुरी में उस समय के लिए वो थे। नंद सुत बोली जा रे वेद गुण गा, नंद सुत वेद गुण गा से कृष्ण अवतीना चैतन्य गोसा, श्री कृष्ण अवतीना चैतन्य गोसा ब्रजेन्द्र नंदन जेई सती सुत हैला सेई ब्रजेन्द्र नंद बोलिए सती सुत हैला सेई बलराम होइलो नीताई बलराम पापी तापीय चिल हरि नामे उधारिलो पापी तापी तार साखी जगाई मधाई तार साखी सारे बोलिए हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुतायुत हा हा प्रभु वृषभानु सुतायुत करुणा को रहे एबार करुणा को नरोत्तम बड़ दुखी नीताई मोरे कर सुखी नीताई मोरे कर सुखी रखरांगा चरणेर पास रखरांगा चरणेर पास
नरोत्तमदास ठाकुर कह रहे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो नंद महाराज के बेटे हैं और यहाँ पर अभी कलि युग में सती माता की गर्भ में जन्म लिए और जिनकी गुणगान वेद में कहा गया है। आप अगर विश्वास नहीं आता है मैं आपको सबूत देता हूँ कि थोड़े ही समय पहले जब उन्हें प्रकट हुआ उन्होंने तो अपनी लीला किए नहीं थे, बच्चे थे, 15 साल के बच्चे थे। तब उन्होंने क्या किए, संसार की सबसे बड़ा पापी जो था, जो थे दो भाई जगाई मधाई, उनको उद्धार कर दिया, ये उसकी सुबूत है। 15 साल उम्र में भगवान चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़े पापी थे संसार की, जिनकी लेखन यमराज की जो दूत लोगों ने लिखते लिखते हैरान हो गए थे, इतना बड़ा लारी उनकी पाप की लिखनी हो गया था और उन्होंने कहा कि इसको कोई नर्क नहीं है जिसमें पनिशमेंट उनकी दंड विधान किया जाए। उस प्रकार पाप व्यक्ति को भगवान चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने लीला प्रकट ही नहीं किया उसी समय उनकी उद्धार कर दिया, इसलिए उसकी सुबुद है। नंद सुतो बोली जा रहे वेद गुणों गाय, इस प्रकार भगवान चैतन्य समय तो संन्यास लेके वहां पर रुके थे। तो अब ऐसा हुआ कि जो गोपीनाथ पटना की जो विषय था कुछ लोगों ने कुछ भक्तों ने गए वहां पर स्वर्ग दामोदर गोस्वामी को बताए कैसा है कि गोपीनाथ पटना को फांसी लगाने वाले हैं, आप उनको कहिए, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनकी सेक्रेटरी थे या बहुत पास वाले व्यक्ति थे। रामानंद राय उसी समय थे नहीं, वो तो थे आंध्र प्रदेश में। अब हुआ ऐसा तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान उन्हें जान लिए, तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बताया कि गोपीनाथ पटना को फांसी लगाने वाले है और आपके साथ राजा की संबंध बहुत अच्छा है, आप ऐसा कीजिए उनकी बिहाप में उनकी तरफ से आप सिफारिश कीजिए इसके द्वारा उसको फांसी ना दिया जाए। इस प्रकार तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको डांटा, स्वर्ग दामोदर को डांटा, उन्होंने बहुत आभास करके कहा बोला मूर्ख गोपीनाथ पटनायक, पैसे लिया सरकार का, खर्चा किया लड़की के पीछे, भोग किया हो और मैं उसकी जिम्मेदारी बनूंगा, तुम लोग कुछ बुद्धि है क्या नहीं है। खर्चा किया पैसा उन्होंने, सरकार का पैसा लिया, मैं साधु व्यक्ति हूं, वो गया लड़की के पीछे, मैं जाऊंगा उसको छुड़ाने के लिए? अरे तुमको कुछ बुद्धि है क्या? नहीं है। डांट के भेज दिया। यहां पे फांसी की तैयारी चल रहा था और सारे गोपीनाथ पटेल की जो परिवार थे उनको लिया गया, जेल में बंद करा दिया गया। उसकी तीन भाई, उसी समय तो रामानंद रे थे नहीं, वो तो अवन तो वहां आंध्र प्रदेश में थे, चार भाई, तीन भाई और चारों भाई, पिता माता सबको जेल में लिया गया। जो बाणीनाथ था वो क्या कर रहा था, वो तो सब भक्त थे, वो जाप कर रहा था जाप, लेकिन जेल में तो कुछ नहीं था, अपनी कपड़े का जो गामछा था उसको फाड़ दिया था, उसमें 108 की नट बनाया था, नट गांठ, और वो कपड़े में जप कर रहा था, कॉटन के कपड़े था, गांठ में जप कर रहा था, महामंत्र जप कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण कर तुम्हें सर्वतीर्थ स्नान, कृष्ण कृष्ण कर तुम्हें सर्वतीर्थ स्नान, कृष्ण कृष्ण कर तुम्हें जप यज्ञ दान, कृष्ण कृष्ण कर तुम्हें जप यज्ञ दान, बोलो कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण कृपा करके बोलिए लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण धन प्राण, कृष्णेर संसार करो छाड़ियो ना चरो, कृष्णेर सारे छाड़ियो ना चरो, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो गामछा था वो 108 बनाने में उसकी गामछा पूरी समाप्त हो गया था, धागा भी नहीं बचा था, फिर वो जप कर रहे थे तो अभी उसको उनको पता कैसा चलेगा कि उन्होंने जप किया, तो उनकी जो बड़े फिंगर था ये वाला फिंगर उसमें एक माला जप किया तो नाखून में एक लाइन अपनी शरीर में दे रहे थे, मतलब ये जो सिला की जो फांसी की जो सिलसिला है 7 दिन तक चला, तो 7ों दिन में उन्होंने जितने माला जप किया था उतनी रेखाएं अपनी शरीर में लगाया था, जो नाखून में काट दिया शरीर को पूरे शरीर खून खून हो गया था, पूरे लाल हो गया था, दांत लाइन हो गया था सब। तो उसी समय में जब भक्तों ने पहले बार भगवान चैतन्य महाप्रभु को बताया कि इस प्रकार घटना है तो चैतन्य महाप्रभु ने नकार कर दिया। उसके बाद में एक या दो दिन बचा था और कुछ भक्तों ने खुद गए बताने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु को, उस समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी नहीं थे वहां पर, उन्होंने कहा कि गोपीनाथ पटनायक की जो सारे परिवार लोग हैं, राजा ने उनको बंदी बना दिया है और ऐसे ही कल उसकी फांसी लगने वाला है, और आप उसके लिए कुछ राजा से आप कुछ सिफारिश कीजिए जिसकी वजह से वो छूट जाए। जब उन्होंने इस प्रकार सुना, भक्त लोगों ने आए गंभीरा में कहा कि इस प्रकार घटना है, गोपीनाथ पटनायक अभी कैदी में है और कल फांसी लगने वाला है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम सब लोगों ने मुझे नौकर बनाकर रखा है और तुमको लगता है मैं तुम्हारी जेब में हूँ, और तुमको लगता है मैं तुम्हारे लिए जाके राजा के पास जाऊँ, अपनी सर अपनी मुंह में घास लूँ और उसकी दंडवत प्रणाम करूँ और कहूँ हे प्रभु, हे मेरी मालिक, हे भगवान तुम गोपीनाथ पटनायक का छोड़ दो, हाँ ये मेरे से होने वाला नहीं। अगर इसकी आगे मुझे कुछ किसने गोपीनाथ पटनायक के बारे में कहा मैं यूं छोड़ के चले जाऊंगा, नहीं चाहिए तुम, नहीं चाहिए तुम्हारी जागा और नहीं चाहिए तुम्हारी सहयोग, इसकी आगे मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। तो सब लोग डर गए और भागे वहां से, बोले अभी ये काम जमने वाला नहीं। फिर आगे उन्होंने तो जिस दिन फांसी लगने वाला था उसी दिन पूरी तैयारी हो रहा था और हरिचंदन करके जो प्रताप रुद्र राजा की एक मिनिस्टर थे उन्होंने देखा कि आज फांसी लगने वाला है, लेकिन पिछले दिनों में वो बहुत अभक्त था, एक बार श्रीवास ठाकुर ने उसको एक थप्पड़ मार दिया था संकीर्तन के समय में, जिसकी वजह से उसको कृपा मिल गया था। देखो साधु ने थप्पड़ मारा तो हरिचंदन को हरिचंदन भक्त बन गया। श्रीवास ठाकुर ने उनको थप्पड़ मार दिए थे पिछले साल रथ यात्रा में। तो जब उन्हें राजा के पास गए पूछा कि मुझे बंगाली वैष्णव ने थप्पड़ मार दिया, वो राजा ने कहा अरे मूर्ख मैं 5 साल से पीछा कर रहा हूं, कृष्ण मुझे बात नहीं किया और तुम कितना भाग्यवान कम से कम कोई वैष्णव तुमको थप्पड़ मार दिया, ये तो तुम्हारी भाग्य है, तुम्हारी भाग्य की उदय हो गया। ठाकुर वैष्णव गण करिए निवेदन, ठाकुर करिए निवेदन मो बड़ा धम दुराचार संसार दारुण निधि ताहे डुबाइला विधि, संसार ताहे डुबाइला विधि केश धरी मारे करे पार, केश धरी जो वैष्णव होता है वो कृपा की अवदान होता है, अवतार होता है। तो शिवा ठाकुर जब नाच रहे थे वो भगवान चैतन्य महाप्रभु गिर गए तो सारे जो भक्त था उनकी जो सर्कल था उन्होंने पीछे आ गए, तो शिवा ठाकुर ये हरिचंदन ऊपर गिर गए तो उसने गुस्सा में उसको थक्का मार दिया था, जिसकी वजह से शिवा ठाकुर ने उसको थापड़ मार दिया था पिछले साल। लेकिन वो थापड़ मारने से राजा ने उसको समझाया कि तुम्हारी बड़े भाग्य, तुम्हारी भाग्य का उदय हो गया, वो भक्त बन गया था। अब ऐसा हुआ गोपीनाथ पटनायक को फांसी लगाने वाले थे तो उसने सोचा कि मैं गोपीनाथ पटनायक बचाऊ, तो हरिचंदन दौड़ के गंभीरा में आए और भगवान चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने बोलने लगे। क्या बोलने लगे? और हरिचंदन जो है राजा की बहुत क्लोज पास की व्यक्ति था और जो राजा जो है भगवान को खूब चाहते थे कि मेरे यहाँ पर यहाँ रहे हो। उन्होंने आके सिफारिश, उन्होंने राजा के पास आया, जो 7 दिन की सिलसिला चल रहा था उसी समय में राजा वापस आ गया था और अपनी राजधानी में था, कटक में था, लेकिन ये जो सिलसिला उनको पता नहीं था कि उसको फांसी लगाने वाले हैं। तो जैसे उन्होंने राजधानी में आए, राज सिंहासन में आए, तो हरिचंदन दौड़ के आए और कहा प्रभु एक मेरी निवेदन है। बोले क्या निवेदन है? ना ऐसा है तुमको पैसे की जरूरत है और व्यक्ति को फांसी लगा दिया जाए तो तुमको पैसे कहाँ से मिलेगा? बोले फांसी को किसको फांसी लगा दिया जा रहा है? तो उन्होंने बोले कि आपकी जो बड़े जना है, बड़े बेटा है गोपीनाथ पटनायक के साथ, उसकी कुछ बातचीत हुआ लेकिन उसमें वो गोपीनाथ पटनायक ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जिसकी वजह से उनको फांसी लगाने के लिए आपके बेटा ने उनको दे दिया है और आज अंतिम दिन है, आज उसकी तारीख है, आज ही उसको फांसी लगाने वाले। बोलते फांसी लगाने वाले? उसको किसने कहा फांसी लगाने के लिए? तो हरिचंद ने कहा कि फांसी लगाना ठीक नहीं है, आप उसके पास पैसा नहीं मिलता है, किसी तरह से उसको जरिमाना दो या कुछ उसको नौकरी में रखो या कुछ पैसे मत दो, लेकिन फांसी लगाना है ठीक नहीं है। और वो इसकी सिलसिला में उन्हें भी कहा, हरिचंद ने कहा सारे भक्त लोगों ने गए थे पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि इस प्रकार की विषय है, लेकिन उन्होंने वो ध्यान नहीं दिया दोबारा जब भक्त लोगों ने गए भगवान चैतन्य महाप्रभु को बोले कि इस प्रकार सिलसिला चल रहा है, आप उनको मदद करो। उन्होंने कहा वो काल छोड़ के जा रहे, जगन्नाथपुरी छोड़ के जा रहे, वो शायद अलरनाथ चले जाएंगे, तो अभी इस प्रकार घटना हुआ है। तो राजा ने कहा चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान है, वो अगर मेरे पास से छोड़ के चले जाएंगे तो मेरे जीवन व्यर्थ हो जाऊंगा, इसीलिए ऐसा करो जाके मेरे बेटे से कहो उसको फांसी ना दिया जाए और गोपीनाथ पटनायक की जो परिवार वाले को छोड़ दिया जाए और गोपीनाथ पटनायक को राजमहल में बुलाया जाए। इस प्रकार यहाँ पर निष्पत्ति हुआ। तो बीच में हुआ क्या, सब भक्तों ने भागदौड़ कर रहे थे कि अभी फांसी लगाने वाले उसको लेने वाले, ये तो निर्णय हुआ उनको पता नहीं था। कुछ और भक्तों ने गए अंतिम समय था तीसरा बार, उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास गए और कहा प्रभु गोसाई अभी एक घंटे में उसको फांसी लगाने वाले, आप कुछ तो कीजिए, आपकी राजा की इतनी संबंध अच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो साधारण जीव हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ऐसा करो आप जगन्नाथ मंदिर में जाओ, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करो, जगन्नाथ जी उसको जरूर सुनेंगे। लेकिन आप लोग अभी कहां से आ रहे हो? तो उन्होंने कह दिया कि हम अभी जेल से आ रहे हैं। जेल आपने क्या देखा? उन्होंने कहा कि जेल में हमने उसकी चारों भाई को देखे, उसकी पिता माता को हमने देखा। तो चारों भाई क्या कर रहे थे? तो बाणी नाथ जो था उसकी पिताजी जो था वो जेल में एक जगह पर शांत बैठे थे और जो तीनों भाई थे वो जप कर रहे थे। लेकिन जो बाणी नाथ था वो ऐसा जप कर रहा था एक हिसाब से बाहर था। क्या कैसा जप कर रहा था? ना एक माला जप करने के बाद में उसकी शरीर में एक निशानी कर रहा था, जिसकी वजह से सातों दिन में उसकी शरीर पूरा निशान से, अभी उसकी पूरे शरीर खून के निशान है सब ऐसा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप जाओ जगन्नाथ से प्रार्थना करो, जरूर जगन्नाथ जी उनको बचाएंगे। इस प्रकार भक्त लोगों ने आए जगन्नाथ से प्रार्थना किए और निर्णय हुआ कि उस गोपीनाथ पटनायक को फांसी से बचा दिया जाए और राजमहल में बुलाया दिया जाए। तो अभी उनकी परिवार वाले को छोड़ दिया गया और गोपीनाथ पटनायक को राजमहल में बुलाया गया। तब राजमहल में बड़े जना नहीं था, राजा प्रताप रुद्र और गोपीनाथ पटनायक के बीच में बात हो रहा था। तो राजा ने कहा आपकी जो सारे परिवार है, एक तो रामानंद रॉय तो मेरे बहुत तो बड़ा व्यक्ति है, मैं एक उनको राज्य दे दिया, तुम्हें भी एक राज्य दे दिया था, तुम तहसीलदार ऑफिसर था, आपको अगर पैसे चाहिए था तो मैं पैसा आपको दे सकता था, लेकिन आपने ऐसा चोरी क्यों किया? लेकिन मैंने माफ इसीलिए कर दिया कि तुम चैतन्य महाप्रभु से आसक्त हो, तुम्हारी परिवार जो सब सदस्य है भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, मुझे पैसे की कमी नहीं है, मुझे क्या कमी है? प्रेम। वो जो प्रेम की जो स्वरूप है वो तुम्हारी पास है, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु की पास में, वो अगर धन जन नहीं मागे कविता सुंदरी धन जन बोलिए कविता सुंदरी शुद्ध भक्ति दियो मोरे कृष्ण कृपा कोरी शुद्ध भक्ति दियो मोरे कृष्ण कृपा कोरी जेई गुरु सेई बंधो सेई पिता माता जेई गुरु सेई बंधो सेई पिता माता श्री कृष्ण चरण जेई प्रेम भक्ति दाता श्री कृष्ण चरण जेई प्रेम भक्ति दाता। चैतन्य महाप्रभु मेरे गुरु है और ये प्रेम धन है मेरा, मेरा प्रेम है, मैं उसको इतना प्रेम करता हूँ, वो होकर चले जाए जगन्नाथपुरी से, मेरा धन क्या काम का, मेरे राज्य क्या काम का, इसीलिए मैं चैतन्य महाप्रभु को जाने देने वाला नहीं। और तुमने जो ऋण लिया था, जो 2 लाख रुपया कर्जा है, मैं सबके सामने कहता हूं कि तुमको माफ कर दिया गया, वो 2 लाख रुपये तुम्हारा माफ कर दिया गया, और तुम्हारी जो तनख्वाह है, जो वेतन है, वो दुगुना बढ़ा दिया गया। कितना कहकर राजा ने एक सिल्क के कपड़े लाए, उसकी सर में बांधे और बड़े सिंहासन पर बिठाए। उन्होंने कहा, गोपीनाथ की गुणगान करने लगे कि गोपीनाथ पटनायक ने भले इस प्रकार कुछ पैसे की मामले में वो हो गया, गलती से कुछ हो गया, लेकिन पिछले दिनों में ये गोपीनाथ पटनायक नहीं, रामानंद राय, भावानंद राय, सुधानिधि बानी जी, सब मेरे प्राण की प्राण है, क्योंकि इनकी परिवार वाले जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हुए। इस प्रकार उन्होंने उनको माफ कर दिया और 2 लाख रुपया की जो पैसे था उसको छूट दे दिया। तो यहाँ पर दधीचि मुनि की जो अस्थि है वो लेके देवता लोगों ने कुछ वज्र बनाने वाले थे, जिसकी वजह से वो देवता लोगों से, असुर लोगों से लड़ सकते हैं। इसीलिए देवता लोगों ने आए यहाँ पर और दधीचि मुनि की उनके बीच में बातचीत हो रहा था। ये जो श्लोक लिखा है कि देवता लोगों ने ये उनको ब्राह्मण करके पुकारा और कहा, उन्होंने कहा, कोई भी चीज हो अगर आश्चर्य इस्तेमाल करने से, उसको सही उपयोग करने से उसकी कुछ वैल्यू है, उसकी कुछ महत्व है, कम से कम मनुष्य, मनुष्य की शरीर। तो ये कथा में इसके लिए बताया, उन्होंने रामानंद राय ने उसको अच्छी इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से रामानंद राय भगवान की प्रिय पात्र बन गए, और गोपीनाथ पटनायक ने वो अच्छी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उनको इस प्रकार बदनाम होना पड़ा। हरे कृष्ण। किसकी कोई प्रश्न है? किसकी कोई प्रश्न है? जय श्रीमद्भागवतम की। अभेचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की। गौर प्रेमानंदे।